आज है 3 अप्रैल दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। जोर पकड़ते चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर गंभीर सवाल उठाए।
इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाताओं को मोदी के पुराने वादे की याद दिलाई।
15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? भूल गए? आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला?
भारतीय सेना को मोदी सेना कहे जाने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सख्त एतराज जताया।
अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी।
शुरुआत विश्व समाचारों से।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। आज का दिन देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियों और आरोपों प्रत्यारोपों के नाम रहा, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाटी में रैली की और कहा कि अरुणाचल के लोगों की परंपरा का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपकी परंपरा को अपनी परंपरा मानने वाला ये चौकीदार आपके साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के गोलाघाट में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि खुद को चौकीदार कहने वाले मोदी ने आप लोगों के बैंक खातों में पैसे नहीं डाले, लेकिन अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की कोलकाता और सिलीगुड़ी में भी रैलियां की और कहा कि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल वोल्किया ने कहा है कि उनका देश निष्पक्ष और सामंजस्यवादी है। आज सुबह ही ब्रुनेई में विवाहेतर और समलैंगिक संबंधों के लिए लोगों को पत्थर मारकर मौत की सजा देने का ऐलान किया गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया का ये छोटा सा देश शरिया कानून को पूरी तरह लागू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चोरी करता हुआ पाया गया तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। सुल्तान बोल्किया का कहना है कि वो अपने देश में लोगों की इस्लाम के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करना चाहते हैं। इन कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉर्ज क्लूनी समेत कई हस्तियों ने ब्रुनेई के सुल्तान के आलिशान होटलों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। शहीरन ब्रुनेई से ताल्लुक रखने वाले एक समलैंगिक पुरुष हैं और उन्होंने पिछले साल ही ब्रुनेई छोड़ दिया था। फिलहाल वो वैंकूवर में हैं और कनाडा में आश्रय के लिए अर्जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रुनेई में समलैंगिक होना सुरक्षित नहीं है।
I was never open in Brunei about my sexuality. I would try to hide it from everybody around me.
मैं ब्रुनेई में अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कभी खुलकर नहीं बोल सका। मुझे इसे सबसे छिपाना पड़ता था। सुरक्षित वैंकूवर पहुंचने से पहले मैंने अपने परिवार तक को इस बारे में नहीं बताया था। पहले तो यहाँ समलैंगिकों को 10 साल की जेल की सजा ही होती थी, अब तो वहाँ मुझे शायद पत्थरों से मार डाला जाए। ये थे ब्रुनेई के एक समलैंगिक पुरुष के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि उन्होंने सरकारी फंड का इस्तेमाल अपने घर को आलीशान बनाने और महंगी चीज़ें खरीदने के लिए किया। उन पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की एक अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। वहीं नजीब रजाक ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है। अदालत के बाहर उनके वकील मोहम्मद शफी अब्दुल्ला ने कहा कि रजाक के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और सही वक्त आने पर वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे। अगर माननीय रजाक से अपना पक्ष रखने को कहा जाएगा तो वो जरूर अपनी बात रखेंगे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी उन्हें सुनना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। ये थे नजीब रजाक के वकील मोहम्मद शफी अब्दुल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मोजाम्बिक के अधिकारियों का कहना है कि वो हाल ही में आए चक्रवाती तूफान ईडाय से प्रभावित हर शख्स तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पीड़ितों के लिए आई खाने की चीजें और राहत सामग्री चोरी होने की खबरें आई थी। साइक्लोन ईडाय से मोजाम्बिक में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। कांग्रेस पार्टी ने कल यानी मंगलवार को जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा 124A को खत्म करने का वादा किया और आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र करार दिया है। अरुणाचल प्रदेश में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों की तरह ही उसका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट है। उधर चुनावी समर में कांग्रेस की कमान संभाले हुए राहुल गांधी ने असम में हुई जनसभा में मतदाताओं को 15 लाख रुपए की याद दिलाई। सुनिए दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला किया। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया।
एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकौसला पत्र कहना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी है जिसके लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उधर असम के गोलाघाट में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर लोगों से किए गए वादे पूरा नहीं करने के आरोप लगाए।
नरेंद्र मोदी जी आए, हर पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अलग अलग वायदे किए, याद है आपको? 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? भूल गए? आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला? कोई यहां एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार ने पैसा डाला? अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है चौकीदार ने, आपके जेब में कितना डाला?
दरअसल पासीघाट की रैली में भाषण दे रहे प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए देश के अन्य हिस्सों के साथ अरुणाचल प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कही।
देश के अंदर 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी, आपके इस चौकीदार ने 1,000 दिन के भीतर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा और 1,000 दिन के भीतर वादा पूरा करके दिखाया भाई।
हालांकि प्रदेश के अंजाव जिले के भरपूर बस्ती में रहने वाले रितेमसो प्रधानमंत्री की हर घर बिजली पहुंचाने की बात को सच नहीं मानते।
मेरा यहाँ तो बिजली तो पूरा गांव में नहीं है, अंजाव में। तो अभी हमारा यहाँ जिसे अंजाव में एक मेलंग बस्ती, मेलंग एक विलेज है, वहाँ बिजली नहीं है। गोयलंग तरफ गोयलंग सर्कल है, वहाँ ऊपर अंदर बिजली नहीं है। तो ऐसे करके ये लोग अरुणाचल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100% जो है बिजली कनेक्शन हुआ बोके ऐसे डिक्लेयर किया है अल्लाह सर, जबकि ऐसे बिल्कुल नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट का एक लंबा इतिहास रहा है। 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यहाँ ज्यादातर शासन कांग्रेस का रहा है, लेकिन पिछले 32 सालों से यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राजधानी ईटानगर में कोई एयरपोर्ट नहीं है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि देशद्रोह की धारा के साथ ही सुरक्षा बलों को अतिरिक्त शक्तियां देने वाले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी एफ्सपा और बिना ट्रायल के हिरासत में लिए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भी तब्दीली करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने इन कानूनों पर कुछ विशेषज्ञों से बात की है और ये रिपोर्ट शुरू होती है वित्त मंत्री अरुण जेटली के कल के बयान से।
इट अपीयर्स दैट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन ड्राफ्टेड बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फ्रेंड्स इन द टुकड़े टुकड़े गैंग।
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए। उन्होंने कांग्रेस के वादों को देश को तोड़ने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र को ड्राफ्ट करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के वो दोस्त हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग में रहे हैं। सेडिशन लॉ या देशद्रोह कानून एक औपनिवेशिक कानून है जो ब्रिटिश राज के समय बना था। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन भी करता है उसे आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA को 1980 में लाया गया था। ये केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी शक्तियां देता है जिसके तहत राष्ट्र हित में किसी भी शख्स को बिना सूचना हिरासत में लिया जा सकता है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA कानून सेना और अर्धसैनिक बलों को ऐसी शक्तियां देता है जिसके तहत वो किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं और हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों के समय इन कानूनों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन हाल ही में देखा गया कि इस कानून के तहत कई मामले दर्ज किए गए। क्या इन देशद्रोह और NSA जैसे कानूनों को समाप्त करना ही बेहतर विकल्प है? इस सवाल पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय साहनी कहते हैं,
देखिए जहां तक NSA की बात है तो कुछ स्पेशल लॉज की आवश्यकता बेशक होती है, जो खासकर इलाके ऐसे होते हैं जहां पे मेजर डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं। NSA की आवश्यकता है, लेकिन उसकी अब्यूज पे जो थोड़ा बहुत अगर संशोधन की आवश्यकता है वो किया जा सकता है। जहां तक कि सेडिशन की बात है, सेडिशन एक तो कोई उसके डेफिनेशन पे क्लैरिटी नहीं है। इसमें देखा गया है कि कोई खास जितने भी हिस्टोरिकली प्रोसेसेस हुए हैं वो बहुत लंबे खिंचते चले जाते हैं, लेकिन उसका असर कोई नहीं होता है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2014 में देशद्रोह के कुल 47 मामले दर्ज हुए, जिनमें 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देशद्रोह जैसे कानून का हाल में काफी इस्तेमाल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित भारत विरोधी नारों से लेकर गोहत्या के अभियुक्तों पर यह लगाया गया है। इस कानून के नाजायज तरीके से इस्तेमाल पर अजय साहनी कहते हैं,
आप कोई भी कानून को का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खिलाफ मैं झूठा केस कर दूं किसी चीज का भी, चोरी का, खून का, किसी भी चीज का, तो ये सब अब्यूज है। ये जो सरकारी एजेंसियां हैं ये एक प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करके, मैं जिसे डिस्क्राइब करता हूँ पनिशमेंट बाय ट्रायल का प्रोसेस कर देते हैं। इन केसेस में कन्विक्शन कभी नहीं होती।
सहारनपुर में दलितों और सवर्णों के बीच हिंसा के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को 2017 में NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो तकरीबन 6 महीने तक जेल में रहे। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद उन्हें जमानत दी गई। चंद्रशेखर का केस लड़ने वाले और मानवाधिकार कार्यकर्ता कॉलिन गोंजाल्विस कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने देशद्रोह और NSA जैसे कानून में तब्दीली की बात की है तो ये स्वागत योग्य है।
देखिए ये खुशी की बात है, हालांकि मैं पॉलिटिशियंस की बातों में मैं नहीं मानता। चांस है कि ये जो बहुत गलत कानून है सेडिशन का, ये सेडिशन रद्द किया जाए।
हालांकि AFSPA जैसे कानून पर अजय साहनी और कॉलिन के विचार अलग अलग हैं। अजय साहनी कहते हैं कि AFSPA में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है कि फौज को कोई गलत काम करने की इजाजत है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वहीं कॉलिन गोंजाल्विस कहते हैं कि ये खतरनाक कानून है।
AFSPA में कोई पॉजिटिव फीचर नहीं है, शक के आधार पर आप मर्डर कर सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है दुनिया में।
साल 2019 की शुरुआत से लेकर अब तक कई लोगों पर देशद्रोह और NSA के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 14 छात्रों समेत साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हीरेन गोहेन और त्रिपुरा की INPT के नेता जगदीश देव वर्मा जैसे नेता शामिल हैं। मोदी सरकार के दौरान दर्ज हुए कई देशद्रोह के मामलों को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा जरूर बनाया है, लेकिन देखना यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जीवित ये कानून अब कब खत्म होते हैं। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
ये सभी कानून कांग्रेस के शासनकाल में मौजूद थे। डॉक्टर विनायक सेन जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को देशद्रोह के आरोप में उसी दौर में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो क्या 5 साल सत्ता से बाहर रहने पर कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया है? ये और दूसरे ऐसे ही कई सवाल मैंने किए वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
मैनिफेस्टो से एक नई कांग्रेस उभरती नजर आ रही है, और ये कांग्रेस जैसे बहुत सारे पत्रकार लोगों ने और संपादकों ने टिप्पणियां की कि इस मैनिफेस्टो के आर्थिक पहलुओं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदंबरम की छाप है। मैंने बिल्कुल साफ कहा कि नो, इन दोनों की छाप नहीं है, इसमें अमर सेन और थॉमस पिकेटी की है, अगर आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए। और अगर सामाजिक और प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर देखा जाए इस मैनिफेस्टो की राय, तो इसमें काफी हद तक पिछले कई सालों से राहुल गांधी जो अब कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उस वक्त कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, उस दरमियान ही उन्होंने बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल्स और दुनिया भर के बहुत सारे एकेडमिशियन जो भारत के बारे में चिंतित रहते हैं या जानते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी अगर मजबूत होती है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत शानदार एक बात होगी, उन सबसे वो विमर्श करते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं।
मेरा सवाल उर्मिलेश जी ये है कि इस क्रूशियल वक्त में जब बीजेपी ने बिसात बिछा दी है, राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक तरह से उनकी रणनीति है, ऐसे वक्त में कांग्रेस का अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा करना कितना राजनीतिक रूप से कितना ठीक था?
मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने इस मुद्दे पर दृढ़ता दिखाई है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के दौरान उन्होंने नहीं दिखाई, और वो ये कि उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के दबाव में हार्ड हिंदुत्व के दबाव में एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अख्तियार की, जिसकी बहुत सारे हलकों में आलोचना भी हुई और बहुत सारे हलकों में प्रशंसा भी की गई। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये जो नया नैरेटिव इस बार चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ने लाया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तय कर लिया था इस मुद्दे पर एक ऑब्जेक्टिव पोजिशन जो हिस्टोरिकली करेक्ट है, वो बहुत दिनों से सोच रहे थे, उसको उन्होंने अंजाम दिया। 24A को IPC में संशोधन करना या उस पर विचार करना और उस पर करेक्शन करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि हम जानते हैं कि विनायक सेन से लेकर कन्हैया कुमार का मामला हो, चाहे कोरे गांव के जो दलित आदिवासी लोग थे उनका मामला हो, आप और भी बहुत सारे मामले उठाकर देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर राजद्रोह जैसा मामला ठोका गया। तो ये सारी केसेज मुझे लगता है कि बहुत
तो ये माना जाए क्या कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस ने ली थी 3 राज्यों में के चुनावों के दौरान, अब उससे थोड़ा सा हट करके ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह का जो नैरेटिव है उसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कितना सफल होगी?
मुझे लगता है कि इन्होंने चैलेंज किया है, और मेरा यकीन है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में साफ हिंदुत्व एडॉप्ट नहीं करती कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी के तौर पे, तो निस्संदेह वो ज्यादा सफल होती, क्योंकि छत्तीसगढ़ उसी समय इलेक्शन हुआ था और छत्तीसगढ़ में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन नहीं ली, उन्होंने किसान और नौजवान ये दो मुद्दे उठाए थे और आदिवासियों के मुद्दे उठाए थे, वहां पर उनकी थंपिंग मेजॉरिटी आई और बेमिसाल जीत उनको मिली।
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश BBC हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर।
दिनभर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई एक चुनावी रैली में राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद पैदा हो गया।
कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है।
आज उन्हीं की पार्टी के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने ऐसे बयान देने वाले को देशद्रोही बताया है। BBC मराठी सेवा के जुगल पुरोहित से एक विशेष इंटरव्यू में जनरल VK सिंह ने यह बात कही। वो गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। आइए सुनते हैं इंटरव्यू के कुछ अंश।
BJP के प्रचार में सब लोग अपने आप को सेना ही बोलते हैं, लेकिन हम किस सेना की बात कर रहे हैं? क्या हम भारत की सेना की बात कर रहे हैं या हम पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि क्या संदर्भ है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। भारत की सेनाएं तटस्थ हैं, अपने आप के अंदर इस चीज़ में सक्षम हैं कि पॉलिटिक्स से अलग रहें। तो पता नहीं मुझे कि कौन ऐसी बात कर रहा है। एक ही दो लोग हैं जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं, जो कि उनके पास और कुछ है नहीं।
तो अगर मोदी जी की सेना को एक टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया, अगर उसमें इसको यूज करते हैं तो आप सहमत
नहीं है? लेट्स बी क्वाइट क्लियर। भारत की सेना की आप बात करते हैं तो मैं भारत की सेना की बात करूंगा। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स की बात करें, जिसको कि कई बार हम मोदी जी की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सेना ये बोल सकते हैं, लेकिन उसमें और भारत की सेना में फर्क है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं।
क्या आप इस बात को मानते हैं, जैसे एडमिरल रामदास जो पूर्व नौसेना के अध्यक्ष रहे हैं, जनरल हुडा जो नॉर्दर्न कमांड के भी हेड रहे हैं, इन दोनों ही ने अपने बयानों में हाल ही के कुछ दिनों में कहा है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस बात पे आप?
पॉलिटिकलाइजेशन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सेना की उपलब्धियों को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए लगता है इस्तेमाल हो रहा है, और DS हुड्डा ने कहा नहीं करना चाहिए
जी।
किसी ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है।
पर जब सर्जिकल स्ट्राइक्स पे मूवी बने,
एक मूवी तो सबके ऊपर बनती है भाई, एक प्रहार मूवी बनी थी आतंकवादियों के खिलाफ, तो इसका मतलब क्या है, और बहुत साल पहले बनी थी, 90 के दशक।
पॉलिटिकल रैलीज में बैकड्रॉप में सीआरपीएफ के जवानों के चेहरे,
एक मिनट, ये जो कई बार मीडिया उठाता है ना, मुझे बताइए, मैं यहाँ पे एक बैनर लगाऊं कि मैं अपने 44 जवान जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्या वो पॉलिटिसाइजेशन है? और जो लोग अगर कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन है, तो मेरे ख्याल से उनको कक्षा 1 से दोबारा पढ़ना शुरू करना चाहिए कि पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है।
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, भारतीय सेना को मोदी की सेना कहने वाला देशद्रोही। चुनाव चर्चा भी जारी है। फिल्म अभिनय के क्षेत्र से राजनीति में कूदी अभिनेत्री जयाप्रदा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तेलुगु देशम पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली जयाप्रदा को हिंदी फिल्मों के दीवानों ने शराबी फिल्म से जानना शुरू किया था। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से होते हुए अब बीजेपी में आ चुकी हैं। बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा ने जयाप्रदा से मुलाकात की और उनसे कुछ सवाल किए।
रामपुर चुनाव क्षेत्र आपको दिया गया है, आप दो बार वहां की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन एक तरह से जो आपके साथ हुआ करते थे आजम खान, पार्टी में तो थे ही आपके साथ में, अब आपके विपक्ष में खड़े होंगे, अब आप किस तरह से देख रही हैं इस चुनौती को?
देखिए, पहले उनका ही चॉइस थी कि मुझे रामपुर ले जाना है, उन्होंने लड़ाया मुझे चुनाव, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा वो बात नहीं रही जो पहले था, तो मैं हमेशा उनको सम्मान देती रही, जो वो मेरे ऊपर कितने भी गालियाँ दे, कितने भी बदतमीजी से बात करे, फिर भी मैं उनको भाई कहती थी।
पर बात कहाँ बिगड़ गई, क्योंकि जैसा आपने कहा वही आपको लेके आए वहाँ पे।
देखिए, वजह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब देखिए आमने सामना तो करना ही है, और पार्टी, पहले मैं अकेली थी, अपनों में पराई होती थी, मतलब मेरे पार्टी में ही मेरे को पराई करते थे, मेरे पार्टी में ही मेरे नेता लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे पार्टी में ही मेरे को विरोध करते थे, फिर भी मुलायम सिंह जी कुछ भी नहीं कहते थे, मेरे को कोई रक्षा नहीं दिया, कई बार हमला हुआ फिर भी कोई कुछ नहीं किया। मैं सांसद, निर्वाचित सांसद होने के बावजूद भी मैं अपने क्षेत्र में नहीं रह पाती थी, मैं मुरादाबाद में रात को जाती थी, वहाँ सोती थी, फिर वहीं से मैं रामपुरा के काम करती थी, मतलब वहाँ ना गेस्ट हाउस मिलता था, वहाँ मुझे एक होटल मिलता था, वहाँ रहने का कोई जगह नहीं देते थे, तो इतने जो माहौल जो ऐसा होता था एकदम,
पार्टी की वजह से या वैसे जो माहौल, मतलब वहाँ के स्थानीय तौर पे क्रिएट किया,
वहाँ पे एक कद्दारवर नेता है, वो नेता उनके दबंग है, तो एक सांसद होने के बावजूद भी मैं अगले क्षेत्र में जाके, मैं मुरादाबाद में रहती हूँ और वहाँ से मैं आके मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो इस परिस्थिति में भी मुझे अपना लीडर्स मुझे सपोर्ट नहीं किए, तो मैं धन्यवाद।
आपने इस चीज का जिक्र अपने राष्ट्रीय पार्टी, अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने भी किया,
कई बार।
ये थी जयाप्रदा, इनके साथ जो ये इंटरव्यू किया गया उसका विस्तार से आप उसको सुनेंगे रविवार को दिन भर कार्यक्रम में। आइए विषय परिवर्तन करते हैं और बात करते हैं पर्यावरण की। जिस हवा में हम और आप सांस लेते हैं उसमें इतना जहर घुल चुका है कि हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की अकाल मौत हो जाती है। पर्यावरण के हाल पर नजर रखने वाले संगठन स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी हवा में पैदा हुए बच्चे की उम्र 20 महीने कम हो जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खराब आबोहवा के कारण 2017 में दुनिया भर में 50 लाख लोग मारे गए थे। मैंने लंदन में बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का से संपर्क किया और इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और जानकारी ली।
लास्ट टाइम 2018 में जो निकाला गया था उसमें ये एयर पोल्यूशन जो है वो 6th रीजन था जो डेथ्स के टोटल डेथ्स होते हैं, तो जैसे कि अब कैंसर हुआ या फिर ब्लड प्रेशर हुआ, इस विभिन्न जो कारण हैं, अभी जो है ये 5th बन गया है, तो उसका जाहिर है कि ये अभी और गंभीर बन गया है,
यानी ज्यादा लोग मरने लगे हैं प्रदूषण से।
जी, वायु प्रदूषण से। और देखिए, जो सबसे गंभीर स्थिति दक्षिण एशिया में दिख रही है।
आखिर ये क्यों ऐसा है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में हालत उतनी ख़राब नहीं है जितने हमारे इधर के इलाकों में, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दक्षिण एशिया का जो इलाका है, वहाँ की सरकारों को क्या करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण कम हो?
जो प्रदूषण की जो स्रोत है, जैसे कि देखिए, अब जिस तरह की कारखाना हम चला रहे हैं, जिस तरह से हम बिजली निकालते हैं जैसे कि कोयला जलाकर या फिर डीजल का प्रयोग करना, अगर आपके पास आप बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, और फिर अगर वहाँ अगर ग्रिड, नेशनल ग्रिड नहीं पहुँचा तो वहाँ तुरंत आप डीजल जनरेटर लगा देते हैं, तो विकास तो होता है। ये सब जो है ये मतलब हम जानते हैं ये हो रहा है, लेकिन इसको किस तरह से कटौती किस तरह से किया जाए, इसको एड्रेस किस तरह से किया जाए। जैसे कि चीन ने उदाहरण दिखाया है, चीन को देखिए तो इसी रिपोर्ट पर भी चीन को ये कहा गया है कि चीन में इससे भी बदतर सिचुएशन था पहले, लेकिन अभी जो है वो कम कर ले जा रहा है, इसमें काफ़ी सुधार आया है।
तो ये रिपोर्ट भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहती है?
देखिए भारत में जो है अब मतलब प्रदूषण वैसे भी अब हेडलाइंस में रहती ही है, और जो स्रोत जो हैं गाड़ियां या फिर कारखाना या फिर जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वही है कारण। लेकिन देखिए एक बात है कि आपको याद होगा शायद लास्ट ईयर जो है कोर्ट ने एक वर्डिक्ट या फिर एक आदेश दिया था कि ये जो कोयला से चलने वाला जो पावर प्लांट्स हैं इनके जो एमिशन जो है इनके स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, तो वो इम्प्लीमेंट लागू कर नहीं सकते, ऐसा तर्क करके गवर्नमेंट कोर्ट गई और गवर्नमेंट ने कहा कि हमें और टाइम चाहिए, ये जो थ्रेशहोल्ड है एमिशन का, ये प्रदूषण का, इसको लागू करने के लिए हमें और टाइम चाहिए, 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए। तो देखिए आप विकास की बात कर रहे हैं एक और दूसरी तरह ये जो एमिशंस इस तरह से संगीन मामला होता जा रहा है, लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट कोर्ट में जाती है और कहते हैं कि हमें टाइम नहीं, हम इसे लागू नहीं कर सकते, तो आपको चॉइस तो आपको करना पड़ेगा क्या चाहिए। और ये जो तर्क है विकास जो है, विकास मतलब सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर या टैंजिबल चीज़ें नहीं, लोगों की जो हेल्थ है, सेहत है, वो भी विकास है, ऐसा इंक्रीजिंगली सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है।
बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। खेल समाचार अभी बाकी हैं। और खेल समाचारों में आज मलेशिया ओपन बैडमिंटन के साथ आईपीएल, आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने खड़े हैं और उनके पास बहुत सारी जानकारी है।
जी राजेश जी, अगर मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात की जाए तो भारत के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देखने को मिले, क्योंकि 8वीं वरीयता हासिल के श्रीकांत एहसान मौलाना मुस्तफ़ा को हराने पर कामयाब रहे 21-18, 21-16 से, लेकिन भारत के एचएस प्रणय हार गए। उधर महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रही जब उन्होंने जापान की आया ओहोरी को 22-20, 21-12 से हराया, लेकिन दूसरी तरफ भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी 8वीं वरीयता हासिल साइना नेहवाल पहले दौर में थाईलैंड के पोनपावी चोचुवोंग से 20-22, 21-15, 21-10 से हार गई। दूसरी तरफ अगर क्रिकेट की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने आगामी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। जाने पहचाने चेहरे शामिल हैं जिसमें कप्तान केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिट, हेनरी निकोल्स, रॉस टेलर, टॉम लैथम और मुनरो, लेकिन एक नए खिलाड़ी टॉम ब्लंडन को उन्होंने 15 सदस्यीय दल में जगह दी है, और बाकी जाने पहचाने चेहरों में टीम सऊदी पैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट शामिल हैं। दूसरी तरफ बात की जाए अगर आईपीएल 12 की, तो थोड़ी ही देर पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लगातार 3 मुकाबले जीतकर धोनी ने सिद्ध किया है कि उनकी टीम वाकई सुपर किंग्स है। दूसरी तरफ मुंबई की टीम जिसके कप्तान रोहित शर्मा है 3 में से 2 मुकाबले हार गए हैं। अब आज देखना है अगर रोहित शर्मा का बल्ला बोला और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया तो फिर चेन्नई के लिए दिक्कत हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में रैली की और कहा कि वो अरुणाचल के लोगों की परंपरा को अपनी परंपरा मानते हैं। वहीं राहुल गांधी ने असम में लोगों से कहा कि खुद को चौकीदार कहने वाले मोदी ने उनके बैंक खातों में पैसे तो नहीं डाले, लेकिन अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। अल्जीरिया की संसद ने राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूतेफ्लिका का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। उनके खिलाफ देश में कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रुनेई के सुल्तान हसलन वोल्किया ने कहा है कि उनका देश निष्पक्ष और सामंजस्यवादी है। आज सुबह ही ब्रुनेई में विवाहेतर और समलैंगिक संबंधों के लिए लोगों को पत्थर मारकर मौत की सजा देने का ऐलान किया गया था। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बीबीसी समाचार।
फिलहाल दिन भर कार्यक्रम में आज इतना ही। स्टूडियो मैनेजर थे तिलक राज भाटिया। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आप सबसे अनुमति चाहता हूं। अगली मुलाकात हमेशा की तरह कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।